राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, शिवृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे
सभी लोग भगवान का भजन हरे हरे चैन हो जाए
हरे 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 राम
Hare Rama वटास्य पात्र पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद पुराण और उपनिषद का पका हुआ फल है, श्री वेद व्यास जी इसे भागवत के प्रारंभ में निगम कल्प तरोर गलितम फल कह रहे हैं। निगम का अर्थ होता है समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषद इतिहास। यदि यह समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषद ये सब की तुलना एक वृक्ष के साथ की जाए तो उस वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। वृक्ष पर फल लगते हैं, परंतु जब वह फल पक जाते हैं तो बहुत मधुर लगते हैं, जैसे आम मैंगो। आम का वृक्ष होता है और जब आम पक जाती है तो बहुत मधुर लगती है। वैसे ये भागवत जो है समस्त वेदों का पका हुआ फल है। गलितम फलम, और उसमें भी सुख मुखादये अमृत द्रव संयुतम, और उसमें भी इस फल को एक तोते ने चख लिया है। आप सब गांव में रहते हो, जानते होंगे जब किसी फल को तोता काट लेता है तो वह फल बहुत मीठा हो जाता है, अथवा मीठे फल को ही तोता काटता है, जो भी है। परंतु तोते के द्वारा खाया हुआ फल बहुत मीठा होता है। वैसे सुखदेव रूपी तोते ने इस भागवत रूपी फल को स्पर्श कर दिया तब तो ये मधुराती मधुर हो गया। बहुत मधुर फल है। तो कुछ लोग मन में प्रश्न कर सकते हैं कि यदि भागवत फल के समान है तो अच्छे से अच्छे फल में भी हम देखते हैं कि इसमें गुठली और छिलका होता है। कितनी भी बड़ी अच्छी आम और महंगी आम खरीदो, चाहे रत्नागिरी आपूस हो या, लेकिन उस आम में गुठली और छिलका अवश्य होता है, जो त्याज्य है, जिसे हम फेंक देते हैं। तो क्या भागवत में भी गुठली और छिलका है, कुछ फेंकने जैसी वस्तुएं हैं? कहते नहीं नहीं, ये भागवत फल नहीं, अमृत द्रव, ये भागवत बना बनाया जूस है। यदि फल हो तो उसमें गुठली और छिलका निकालना भी पड़ता है, परंतु कोई आपको बना बनाया जूस ही दे दे तब तो उसमें कोई कष्ट नहीं, कुछ निकालना नहीं है, कुछ फेंकना नहीं है। इसलिए पिबत भागवतम, इस भागवत को पीते रहना चाहिए। देखिए भागवत को पीने के लिए कहा गया है, भागवत को खाना नहीं है, पीना है। खाने में और पीने में अंतर होता है ना? क्या अंतर होता है? जब खाना खाते हैं, रोटी सब्जी चावल, तो उस खाने को चबाना पड़ता है, और उसमें भी किसी को बहुत कष्ट होता है। हमारे गुरु महाराज अक्सर एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक ब्राह्मण शाम को घर पर आए और पत्नी ने बहुत सुंदर भोजन तैयार करके रखा था, रोटी सब्जी दाल भात। पत्नी ने अपने पति को सारा भोजन परोस दिया, एक हाथ से भोजन परोस रही है, दूसरे हाथ से पंखा जल रही है, और वो ब्राह्मण मात्र भोजन कर रहे हैं लेकिन ब्राह्मण का पसीना छूट रहा है। तो पत्नी ने कहा, बुरा ना लगे तो एक बात कहूं, बोलो भाग्यवान। कहा, 3 घंटे से भोजन मैंने बनाया, ये रोटी सब्जी मैंने पकाया, और अभी भी सर्विस मैं कर रही हूं और पंखा मेल जल रही हूं, पतिदेव पसीना आपको क्यों आ रहा है? सारी मेहनत मैं कर रही हूं, सारी मेहनत मैंने की, मैं पंखा भी डाल रही हूं, परोस भी रही हूं, और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? ब्राह्मण ने कहा, चबा कौन रहा है तेरा बाप? चबाने में परिश्रम होता है, भागवत को चबाना नहीं है, पीवत भागवतम, भागवत को पीना है। अर्थात भागवत एक ऐसा साधन है जिसे करने में कोई कष्ट नहीं, और भागवत के अलावा अन्य जितने भी साधन है उस साधन में कष्ट है। जैसे भोजन करते हैं तो कष्ट होता है चबाना इत्यादि, वैसे भागवत को छोड़कर अन्य साधनों में बहुत कष्ट है। आप देखोगे किसी को भागवत छोड़कर अन्य साधन, मान लो दान करना है, तो दान देना कितना बड़ा कष्ट है ना, पहले तो जेब में हाथ ही नहीं जाता है, और चला गया और 10 रुपया निकला तो व्यक्ति 100 बार सोचता है, दूं कि न दूं, दूं न दूं, कितना कष्ट। तपस्या करना कितना कष्टमय है, 15 दिन में एक बार एकादशी भी बहुत मेहनत से होती है, और उसमें भी एकादशी के दिन उपवास करना होता है, लेकिन भक्तों की इतनी बड़ी कृपा है कि एकादशी के दिन आलू की सब्जी बनाते हैं, रवा की होती है ना, रवा पूरी किसकी होती है, और राजगिरा की पूरी होती है। अब तो कुछ आटा निकला है, रोटी भी बना सकते हो, गाजर का हलवा, दूधी का हलवा, सामा की खीर, इतना इतना व्यंजन करके भी एकादशी रहना कठिन हो जाता है, तपस्या मुश्किल है। अन्य ध्यान योग ये सभी साधन करना मुश्किल है, परंतु भागवत, देखिए भागवत सबसे बड़ा साधन है और सबसे सरल साधन है। बताइए, मैं बोल रहा हूं, आप बैठकर सुन रहे हैं, क्या कष्ट हो रहा है? कोई कष्ट नहीं, 2 घंटा सुनना है और सुनने के बाद प्रसाद मिलेगा। इसलिए वेदव्यास ने प्रारंभ में ही कह दिया, पिवत भागवतम, भागवत श्रवण करने में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं, इसलिए पीते रहो, पीते रहना चाहिए। तो मन में प्रश्न हो सकता है, कब तक पीना चाहिए? 45 मिनट, 1.5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, कब तक पीना चाहिए? इस भागवत को कब तक सुनना है? तब वेद व्यास जी कहते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम, जब तक आलय नहीं आ जाता है, आलय का अर्थ है प्रलय, और प्रलय का अर्थ है मृत्यु, जब तक मृत्यु नहीं आ जाती है, मृत्यु पर्यंत तक इस भागवत को निरंतर सुनते रहना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, भागवत का निरंतर सेवन करना चाहिए। तब और एक मन में प्रश्न उठ सकता है, क्या आप कहते हो कि इस भागवत को नित्यम पीते रहो पीते रहो, लेकिन कितना भी अच्छा ड्रिंक हो, 1 ग्लास पियोगे, 2 ग्लास, 5 ग्लास, 10 ग्लास, यदि आपका फेवरेट है तो 20 ग्लास, लेकिन फिर तो उबन आएगी, एक स्थिति तो ऐसे आएगी जब उबन हो जाएगी। मान लो आपको भूख लगी है और रसगुल्ला बहुत पसंद है आपको, तो एक रसगुल्ला खाओगे, दो, पांच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस, तीस, चालीस, कितना खाओगे? फिर एक उबन सी आ जाएगी कि एक महीने तक फिर रसगुल्ला के सामने देखेंगे नहीं, घृणा सी हो जाती। तो मान लो मन में प्रश्न हो कि निरंतर नित्यम भागवत का श्रवण करने से क्या भागवत के प्रति उबन उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो वेदव्यास जी कहते नहीं नहीं, अमृत द्रव, ये भागवत कोई साधारण तत्व नहीं है, भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये भागवत अमृत के समान है। अमृत माने न अमृत, इस भागवत का जो टेस्ट है कभी मृत नहीं होता है, निरंतर। इस संसार के जो गाने हैं, संसारिक जो कथा है, अच्छे से अच्छा फिल्म हो एक बार देखोगे, दो बार, पांच बार, दस बार, कब तक देखोगे? फिर वो पुराना हो जाता है। आज नया गाना होता है तो 10 दिन के बाद पुराना, ओल्ड। परंतु भागवत, यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराणम, ये महापुराण बहुत पुराना ग्रंथ है, परंतु फिर भी इसकी विशेषता ये है कि जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको नित्य नवीन आनंद प्राप्त हो। 15 साल से तो हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, रोज कुछ नया मिलता है, रोज कुछ नया। यत सुनवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, ये भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रत्येक स्कंध में, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में और प्रत्येक अक्षर में पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है। स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक पद पर आनंद बढ़ता जाता है, घटता नहीं। भागवत एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, इसे पीते रहना चाहिए, चाहे कथा में, पंडाल में बैठकर, या घर पर टीवी में, सीडी में, एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशया, कैसे भी करके हमारा मन भगवान में निवेश होना चाहिए, आवेशित होना चाहिए, और भागवत के द्वारा हमारा मन निश्चित भगवान में लगता है। हम देखिए अन्य जितने भी साधन है ना, उसमें भगवान में मन लगे या न लगे, परंतु मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, आप माला जपने बैठोगे शायद मन नहीं लगेगा, परंतु भागवत में बैठे हो पूरा पूरा मन लग जाता है। है कि नहीं, अनुभव है कि नहीं आपका? एक डेढ़ घंटे तक पूरा, बताइए कितना सुंदर साधन है। व्यक्ति का मन पूरा उसमें लग जाता है, आवेशित हो जाता है, और भगवान यही चाहते हैं। गीता में भगवान यही कहते हैं, मई एव मन आदत्स्व, ये अर्जुन मुझे अपना मन दे दो, मन मना भव मद भक्तो। बहुत बार मन मन की चर्चा करते हैं, तो हमारा मन भागवत में स्वाभाविक लग जाता है, और यदि हमारा मन भागवत में लगता रहा और सुनते रहे तो फिर जीवन के अंतिम समय में निश्चित हमारा मन भगवान में लगेगा, और मृत्यु के समय यदि हमारा मन भगवान में इस प्रकार लग गया तो भगवान का धाम निश्चित हो गया। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण युक्त्वा कलेवरम्। अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति अपने अंत समय में मुझ में अपना मन लगा देता है, मेरा स्मरण करता है, तो वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम, ये अपना कलेवर छोड़ते समय व्यक्ति अपने मन में जो सोचता है उसे वैसी गति प्राप्त होती है, और यही है जीवन का वास्तविक लाभ। जैसे हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में रोज शाम को हिसाब जोड़ते हैं कि आज प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या कुछ लोग महीने पे करते होंगे, कुछ लोग मार्च टू मार्च करते होंगे, कुछ लोग दिवाली टू दिवाली, लेकिन करते जरूर है। तो ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन का प्रॉफिट क्या है, मनुष्य जीवन का प्रॉफिट यही है, जन्म लाभ परे पुंसाम। पुंसाम मनुष्यों के लिए, इस संसार में मनुष्य के शरीर में जन्म लिया है उसका लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है। जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं, प्लस माइनस ये इधर का उधर, परंतु जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत समय में नारायण की स्मृति हो गई, मन में भगवान याद आ गए शरीर छोड़ते समय, तो जीवन आपका प्रॉफिट में रहा। और जीवन में बहुत पैसे कमाए, बहुत नाम कमाया, यश कमाया, परंतु मरते समय भगवान याद नहीं आए, तो ये जीवन बहुत बड़ा लॉस और धोखा बन के रह जाए। अंत समय में भगवान याद आने चाहिए। तो कुछ लोग खड़े होकर चले जाएंगे, बस प्रभु जी आपने तो हमें उपाय बता दिया, अब अंतिम समय की बात है ना, मरने के समय याद कर लेंगे भगवान को, और हमें भगवान नहीं याद आएंगे तो दो तीन बच्चों को कह देंगे यार याद करा देना मुझे। लेकिन भक्तों पूरे जीवन में जो अभ्यास करते हैं ना वही अंत समय में याद आता है। जैसे स्कूल में पढ़ने वाला बालक पूरे साल कुछ न पढ़े और जब परीक्षा का समय आता है और पढ़ने बैठ जाए तो वह एक रात में क्या पढ़ पाएगा, फिर वो फेल हो जाता है, इम्तिहान में हार जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि जीवन की परीक्षा में हमें उत्तीर्ण होना है, देखिए स्कूल में तो प्रति साल एक परीक्षा होती है, परंतु मनुष्य जीवन में एक ही परीक्षा होती है और वो परीक्षा मृत्यु के समय होती है। परीक्षा एक बार होने वाली है, इम्तिहान एक बार होने वाली है, परंतु तैयारी जीवन भर करनी है, अभ्यास जीवन भर करना है। और अभ्यास क्या करना है, हमारे मन को भगवान में लगाने का। क्यों मन ही भगवान में लगाना है, और भगवान ने क्यों और कोई इंद्रियों का नाम क्यों नहीं दिया। इसलिए भगवान कपिल देव की शिक्षा में ही वर्णन आगे होगा कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो सबसे पहले व्यक्ति की चेतना जो है इंद्रियों से निकल जाती है, सबसे पहले आंखें जो है नष्ट हो जाती है, दृष्टि नश्यते, बर्दते च बधिरता, कान सुनना बंद कर देते हैं, दशनम विहीनम, दांत टूट जाते हैं, मुखम च लालायते, फिर हाथों से शक्ति निकल जाती है, पांव से निकल जाती है, इंद्रियों से चेतना धीरे धीरे निकल जाती है, फिर बुद्धि से चेतना निकल जाती है, बूढ़े की बुद्धि खाली हो जाती है, फिर अहंकार से पहचान भी कौन आए हैं, बूढ़े के पास आएंगे तो पहचान नहीं पाते हैं। धीरे धीरे ये चेतना देखिए कहां से निकलती है, आंखों से, इंद्रियों से, हाथ से, फिर बुद्धि से, फिर अहंकार से, ये चेतन तत्व जो है अंत में मन में रहता है, वाणी से सबसे निकल जाता है। अब आप विचार कीजिए, कुछ लोग कहेंगे मरते समय भगवान का नाम लेंगे, मरने से दो महीना पहले वाणी बंद हो जाती है ना, वा गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, बोल नहीं, मरने वाला बोल पाता है, वाणी कब की बंद हो जाती है, कान कब के बंद हो जाते हैं, केवल मन उनका शुरू रहता है। और यदि अभ्यास किया है पूरा जीवन भर मन को भगवान में लगाने का, तब वो अंतिम समय में मन भगवान में लगा सकता है, नहीं तो फिर। इसलिए भगवान ने मन लगाने के लिए कहा, अभ्यास करो मन लगाने का। और भक्तों ये अनुभव की गई बात है कि हमारा मन भागवत कथा से भगवान में लग सकता है, तो बहुत सुंदर यह है साधन है श्रवणम, जिस साधन के द्वारा हम हमारे मन को भगवान में लगा सकते हैं। वैसे इस संसार में जितने भी साधन है, नियम है, यम है, रूल्स और रेगुलेशन है, ये सभी यम नियम साधन केवल एक ही चीज के लिए बनाए गए हैं। रूप गोस्वामी भक्ति सामर सिंधु में लिखते हैं, स्मरतव्य सततम विष्णु विस्मरतव्य न जातु चित्त सर्व विधि निषेध्यासुर एत युरेव किम कर। जितने भी यम नियम साधन है बस इसी के लिए बनाया है कि हमारा मन निरंतर भगवान में लगे, और भगवान में मन लगाने के लिए सर्वोच्च साधन यदि कोई है तो है भगवत कथा का श्रवण। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं, हमारे मन को भगवान में लगाने का एक अभ्यास कर रहे हैं। आइए श्रील प्रभुपाद जी की इस असीम अनुकंपा का, असीम कृपा का हम लाभ उठाएं। यहां पर श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध से 41वें अध्याय से मथुरा लीला का श्रवण कर रहे हैं। मथुरा के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजधानी तत साभूत सर्व यादव भू भुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। यादवों की राजधानी और यह ऐसी नगरी थी जहां पर भगवान निरंतर विराजमान रहते थे। ऐसे मथुरा में अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी को लेकर आए और उस कृष्ण के रूप को देखकर मथुरा की जितनी भी स्त्रियां थी मंत्र मुग्ध हो गई। कृष्ण की अद्भुत छवि है, कृष्ण का अद्भुत रूप लावण्य को देखकर सभी गोपियां प्रसन्न हो गई और कृष्ण की ओर देखते रह गए। गत सत्र में हमने सुना कि मथुरा में रहने वाली जो स्त्रियां थी, पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं रास्ते से, अपने अपने काम को छोड़कर, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कुछ गोपियां हाथ के आभूषण को पांव में पहना, पांव के आभूषण को हाथ में, कुछ गोपियां आभूषण करना भूल गई, आधे वस्त्र पहनना भूल गई, कुछ गोपियां भोजन, क्षमा कीजिए गोपी शब्द ही आ रहा है, कुछ स्त्रियां भोजन कर रही थी, पता चला कृष्ण आए हैं कृष्ण को देखने के लिए, भोजन छोड़कर चली गई। कुछ स्त्रियां अपने पति की सेवा कर रही थी उसे छोड़कर चली गई। सभी स्त्रियां अपने अपने कार्य को छोड़कर, सुधीर गोस्वामी ने यह भी कहा कि कुछ ब्यूटी पार्लर में बैठी थी और उपटन लगा रही थी, पता चला कृष्ण आए तो उपटन लगे लगे निकल गई भूत की तरह। सब लोग कृष्ण को देखने के लिए, वास्तव में कृष्ण का रूप ही इतना सुंदर है कि कोई गोपियां या कोई स्त्री या कोई भी व्यक्ति कृष्ण को बिना देखे रह नहीं सकता। ऐसा ही एक प्रसंग वृंदावन में भी हुआ था। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वंशी वट के नीचे खड़े रहकर बंसी बजाई और उस बंसी को सुनकर सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास आई। कुछ अपने पति को छोड़कर, कुछ गोपियां सास ससुर को छोड़कर, कुछ अपने दूध पीते बच्चों को छोड़कर उस यमुना के तट पर समस्त गोपियां आ गई। देखिए भगवान भी परीक्षा लेते हैं। गोपियां आई और कृष्ण ने पूछा कि आप लोग यहां पर क्यों आई हो इतनी रात को। गोपियों ने कहा, कृष्ण आपने बुलाया इसलिए आ गई आपको देखने के लिए। बोले, देख लिया ना मुझे, चलो अब वापस चले जाओ। अब क्या करें, घर पे इतना अपमान, इतना रिस्क लेकर आई थी, परंतु भगवान के जो भक्त हैं कभी कभी भगवान को भी भारी पड़ जाते हैं। गोपियों ने कहा कि कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर खड़े खड़े आप कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज, वहां पूरे जगत को उपदेश देते हो कि सभी छोटे मोटे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा। और आज हम हमारे सभी धर्मों को सभी कर्तव्यों को छोड़कर कृष्ण जब आपकी पास आई है तो आप कहते हो कि चली जाओ, हम कैसे चली जाए। गोपियों की बात कृष्ण को बहुत अच्छी लगी और गोपियों के ऊपर कृपा करके उस समय कृष्ण ने बहुत सुंदर रास लीला का आयोजन किया। 33 करोड़ गोपियां थी और कृष्ण अकेले, अद्भुत रास लीला हुई। मैं कह रहा हूं कृष्ण को देखने के लिए सब लोग उत्सुक रहते हैं। कृष्ण का एक नाम ही है हरि, हरि जो है कृष्ण का नाम है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि शब्द अनेक अर्थ, हरि शब्द के बहुत अर्थ होते हैं परंतु दुई मुख्यतम, परंतु जो दो अर्थ हैं वे मुख्य हैं। क्या है? सर्व अमंगल हरे, हरि का एक अर्थ है सभी अमंगलों को जो हर ले उसे हरि कहा जाता है। कृष्ण जो है सभी अमंगलों को हर लेते हैं। परंतु हरि का दूसरा अर्थ प्रेम दिया हरे मन, हरि का दूसरा अर्थ है सुंदर। कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि सबके मन को चुरा लेते हैं। ब्रज के भक्त गाते हैं ना, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। ब्रज के लोग कहते हैं कि हमारे ब्रज में एक अद्भुत चोर आया है। कैसा चोर? गोपांगना नाम दुकुलपित चोरम। हमारे ब्रज में चोर आया है जो मक्खन चुराता है, मक्खन ही नहीं गोपियों के वस्त्र को चुराता है। और इतना ही नहीं, संसार में बहुत सारे चोर देखे हैं और सुने हैं। कुछ चोर होते हैं जो किसी के टीवी को चुराते हैं, कुछ लोग धन को चुराते हैं, कुछ लोग गहने को चुराते हैं, कुछ लोग हीरे को चुराते हैं, और कुछ लोग सोफिस्टिकेटेड चोर सफेद कोट में किसी की किडनी को चुरा लेते हैं, यहां तक के चोर देखे हैं। परंतु हमारे ब्रज में जो चोर आया है वह दूसरों का हृदय ही चुरा लेता है, हाथ ही चुरा कर भाग जाता है। बोले किसका हृदय चुराया? श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम चोराग्य गमनम पुरुषम नमान। श्रीमती राधा रानी का हृदय ही चुरा लिया। अरे ये चोर नहीं, ये दुनिया के जितने चोर हैं सभी चोरों का सरदार है, इसलिए हम इसे प्रणाम करते हैं। ये चोर के सरदार को हम प्रणाम करते हैं। अनेक जन्मार जित पाप चोरम। ये चोर कैसा है? ये चोर की बहुत बड़ी टीम है, अकेला नहीं घूमता है, इसकी बहुत बड़ी टीम है। और यदि कोई इस चोर की टीम में शामिल हो जाए तो फिर वह दर दर भटकते रहता है, कभी वृंदावन, कभी मायापुर, कभी जगन्नाथपुरी है। ये जो हमारी परिक्रमा चल रही है ना, ये चोर की टीम है, कभी यहां कभी वहां, फिर दर दर। और इस ये अद्भुत चोर ऐसा चोर है कि एक बार भी यदि कोई अपने मुख से इस चोर का नाम ले लेता है तो अनेक जन्मार जित पाप चोरम, ये चोर का नाम एक बार भी अपनी जीवा पर आ गया तो करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप ही चुरा कर चला जाता है। ये चोर नहीं है तो चोरों का सरदार है। इस चोरों के सरदार को चोराग्य ग्रमणम पुरुषम नमामि, प्रणाम करते हैं। एक भक्त बहुत सुंदर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप चोर हो इसमें कोई डाउट नहीं है, संसार का बच्चा बच्चा भी जानता है। और जो चोर होते हैं ना वे भागते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं चोर को अंधेरा बहुत पसंद है और साधुओं को उजाला। साधु लोग सोचते हैं कि कब ब्रह्म मुहूर्त हो, कब सुबह हो, कब हम लोग माला जपेंगे। और जो चोर होते हैं वो रात की राह देखते हैं, कब अंधेरा हो और हम चोरी करें। क्योंकि अंधेरे में छिपने की जगह मिलती है। एक भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप चोर हो उसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, और उसमें भी आप चोर हो तो अंधेरा तो ढूंढ ही रहे होंगे आप, प्रभु एक काम कीजिए, मेरे हृदय में करोड़ों करोड़ों जन्मों से अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, आपको छिपने की परफेक्ट जगह मेरे हृदय में है, आप इस अंधेरे हृदय में आकर छिप जाइए, कोई आपको ढूंढ नहीं पाएगा। इस प्रकार से भक्तों की प्रार्थना। तो वास्तव में कृष्ण अद्भुत चोर है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की सुंदरता को कहते कहते थकते नहीं है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि हे सनातन, कृष्ण के बारे में क्या बताऊं, कितने सुंदर हैं ये कृष्ण। गोपियां जब कृष्ण सामने आते हैं तो गोपियां निरंतर उसे देखती रह जाती हैं और ब्रह्मा जी को गाली देती हैं कि ये विधाता इतना बूढ़ा है परंतु ये मनुष्य के शरीर को बनाने नहीं आया इसे। बोले इतनी सुंदर आंखें बनाई, इतना सुंदर रूप बनाया, परंतु ये ब्रह्मा ने आंख के ऊपर पलक क्यों बनाया? क्योंकि जब तक ये पलक गिरती है उतनी देर तक हम कृष्ण को देख नहीं सकते। विचार कीजिए कितनी सुंदरता होती है, अद्भुत सुंदरता। और कृष्ण इतने सुंदर हैं कि कृष्ण उसे गोपियों के मन रूपी रथ पर सवार होते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहते हैं, चढ़ी गोपी मनोरथे मन मथे रमन मथे, चढ़ी गोपी मनोरथे मन मथे रमन मथे, नाम धरे मदन मोह अना। बहुत सुंदर बात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपियों के मन रूपी रथ पर सवार होते हैं ये कृष्ण, और मदन को भी, कामदेव का दूसरा नाम है मदन। ये कामदेव अपनी शक्ति से पूरे जगत को मोहित करता है। जो कामदेव पूरे जगत को मोहित करता है उसका वह कामदेव कृष्ण को देखकर मूर्छित हो जाता है। कृष्ण उस कामदेव को भी मोहित कर देते हैं, इसीलिए कृष्ण का एक नाम हुआ मदन मोहन। चढ़ी गोपी मनोरथे मन मथे रमन मथे, चढ़ी गोपी मनोरथे मन मथे रमन मथे, नाम धरे मदन मोह अना। नाम धरे मदन मोह अना। बहुत सुंदर भजन ब्रज के भक्त गाते हैं। मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में,
मोहन बस गयो मेरे मन में,
लोक लाज कुल कानी घुट गई,
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 या की ने हल गन में मोहन बस गयो मेरे मन में,
मोहन बस गयो मेरे मन में,
मोहन बस गयो मेरे मन में,
मोहन बस गयो।
गोपिया गा रही है ये मोहन मेरे मन में बस गया है, चाहकर भी हम इसे निकाल नहीं सकते। गोपिया भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु प्रभु आप हम पर कृपा कीजिए कि कुछ समय के लिए हम आपको भूल सके, क्योंकि आपकी याद हमारे मन से जाती नहीं है और घर का कोई काम ठीक से हो नहीं रहा है। कृपा कीजिए कि कुछ देर तक हम आपको भूल सके प्रभु।
जित देखो तित वो ही दिखे,
जित देखो तित वो ही दिखे,
जित देखो तित वो ही दिखे,
जित देखो तित वो ही दिखे।
गोपिया कहती है कि मैं जहां पर देखूं वहां पर मोहनी दिखाई दे रहा है, यहां देखूं तो वहां कृष्ण, घर पर देखूं तो कृष्ण, रसोई घर में कृष्ण, सब जगह पर कृष्ण ही कृष्ण, मेरे सभी अंग अंग में कृष्ण छाए हुए हैं, क्या करूं।
जित देखो तित वो ही दिखे,
जित देखो तित वो ही दिखे,
जित देखो तित वो ही दिखे,
जित देखो तित वो ही दिखे।
घर बाहर आंगन में, घर बाहर आंगन में,
घर बाहर आंगन में,
अंग अंग प्रति रोम रोम 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 में,
छायर यो तन मन में मोहन बस गयो मेरे मन में,
मोहन बस गयो मेरे मन में,
मोहन बस गयो मेरे मन में,
मोहन बस गयो मेरे मन में।
लोक लाज कुल कानी घुट गई,
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 या की ने हलगन बाजू बंद भुजन में,
बाजू बंद भुजन में,
बाजू बंद भुजन में,
बाजू बंद भुजन में,
कंकन कलित ललित वन माला,
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 नुपुर ध्वनि चरणन में मोहन बस गयो मेरे मन में,
मोहन बस गयो मेरे मन में,
मोहन बस
कीर्तन कर सकते हैं।
चपल बेन बिकुटी बरबाती, चपल बेन चपल बेन बिकुटी बरबाती,
चपल बेल बिकुटी बरबाती।
ताड़ो सदन लतन में,
ताड़ो तन सदन में,
ताड़ो सदन लतन में, नारायण बिन मोल बिकी हो,
नारायण बिन मोल बिकी हो,
नारायण बिन मोल बिकी हो,
नारायण बिन मोल बिकी हो।
या कीने हसन में मोहन बस गयो मेरे मन में,
मोहन बस गयो मेरे मन में,
मोहन बस गयो मेरे मन में। लोक लाज कुल कानी घुट गई,
लोक लाज कुल कानी घुट गई,
लोक लाज कुल कानी घुट गई,
लोक लाज कुल कानी घुट गई।
या कीने हल सिर सवर्ण में रण रण पट फरण करण पद घूंगर रंग भर सोंदर श्याम मेरे जीजी रंग भर सोंदर
श्याम मेरे जीजी रंग भर
राम राम हरे हरे। काहे को तरसावे,
मेरे घर कबहु दयावे सावरिया मोहे काहे को तरसावे,
मेरे घर कबहु नयावे सावरिया मोहे काहे को तरसावे,
मेरे घर कबहु दयावे सावरिया मोहे काहे को तरसावे,
काहे को तरसावे रे लाला मोहे घर कबहु नयावे सावरिया।
Thank you.
जानेगी
जय।
वास्तव में नाचना चाहिए, यहां नहीं नाचेंगे तो कहां नाचेंगे। दो विकल्प हैं हमारे पास, या तो यहां पर भगवान के सामने नाचिए या घर पे पत्नी के सामने नाचिए। नाचना तो अवश्य है, नाचना तो हर एक को पड़ता है। भगवान के सामने नहीं नाचेंगे तो माया के सामने नाचेंगे। वास्तव में प्रभु जी ने सही कहा कि यहां पर लोगों को नाचना आता है। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग उदंड। देखिए, नाचने में भी बहुत सारी कलाएं होती हैं। इस संसार में वास्तविक नाचना कोई जानता है तो कृष्ण, नटनागर कहा जाता है कृष्ण को, नाचने में श्रेष्ठ। और कृष्ण के बाद यदि कोई नाचना जानता है तो वह शिव जी, नटराज। नट में, नाचने में जो राज है शिव जी। सभी प्रकार का नृत्य जानते हैं शिव जी। देखिए, नृत्य अलग अलग प्रसंग में अलग अलग होता है। कभी इमोशनल प्रसंग में कुछ अलग नृत्य होता है, भगवान के नाम और महामंत्र में कुछ अलग नृत्य होता है, और प्रलय के समय भी शिव जी नृत्य करते हैं, उदंड नृत्य। तो ऐसे कुछ भक्त जानते हैं नृत्य करना, जैसे हमारे श्याम गोपाल प्रभु, इष्ट देव प्रभु, कुछ भावभंगी से नृत्य होता है। परंतु प्राय सब लोग भांगड़ा के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, बस ऐसे ज्यादा ऐसे ऐसे करेंगे। सीखना चाहिए, नाचना चाहिए कृष्ण के लिए। तो कृष्ण की सुंदरता अद्भुत है, और उनकी अद्भुत सुंदरता को देखकर मथुरा की सभी स्त्रियां उन पर, उनको देखने के लिए आ पड़ी। दृष्ट्वा मुहुः श्रुत मनुत्व चेतस्तम। दृष्ट्वा, मथुरा की सभी नारियां रास्ते पे आ गई और रास्ते के ऊपर खड़े रहकर कृष्ण को एक दृष्टि से, कृष्ण को देख क्या रही थी, आंखों के द्वारा कृष्ण को पी रही थी, आंखों के माध्यम से कृष्ण को अपने अंदर भर रही थी। और आंखों से, नेत्र से कृष्ण को देखकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वे अपनी आंखें बंद कर लेती थी। वे सोचती थी कि यदि आंखें खोल दें तो वह कृष्ण बाहर निकल जाएंगे। देखिए, कृष्ण को देखने की भी कला होती है। कुछ लोग तो दर्शन करने के लिए आते हैं, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, आकर सो जाते हैं, खड़े होकर चले जाते हैं, देखते भी नहीं है कौन सा वस्त्र पहना है, क्या रंग का वस्त्र है। इनमें से आधे लोगों को नहीं पता होगा कि आज भगवान ने कौन से रंग का वस्त्र पहना है। देखना चाहिए, देखकर दृष्टि से उनको ग्रहण करना चाहिए। मथुरा की नारियां देख रही थी एक दृष्टि से, और वे सोच रही थी कि वास्तव में गोपियों का क्या भाग्य है। वे अपने मन से सोच रही थी, गोपियों ने न जाने कौन सी तपस्या की है जिससे कृष्ण निरंतर उनके सामने ही रहते हैं और उनको अपने दर्शन का सौभाग्य देते हैं। धन्य है वो गोपिया। इस प्रकार से मथुरा की नारियां कृष्ण का दर्शन करती हैं, और कृष्ण जहां जहां जिस जिस स्थान पर जाते हैं, नारियां कृष्ण का दर्शन करती हैं और पुरुष जो है अपने घर से श्रीफल, नारियल लाकर, अगरबत्ती, दियाबत्ती लाकर कृष्ण की पूजा करते हैं। जहां चौराहा आया वहां पर कृष्ण का रथ, कृष्ण खड़े रहते हैं और सब लोग उनकी आरती, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा में होता है, रास्ते में आरती होती है, वैसे आरती। अब इस प्रसंग को समाप्त करके नया प्रसंग शुरू कर रहे हैं। अब कृष्ण मथुरा में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि यार यहां तो बहुत लोग हमें देखने के लिए आए, यहां तो अपना कुछ नाम है, अपने को बहुत लोग जानते हैं यहां तो, क्यों बलदेव जी? आज हमें पता चला, गोकुल से बाहर निकले तब पता चला कि अपनी भी संसार में कुछ वैल्यू है। लेकिन यार यहाँ पर इस प्रकार से हम ये गांवठी वेश पहनकर आए हैं, ये गांवठी कपड़े हैं, ये लोग क्या समझेंगे कि ये गांव के रहने वाले सब? या मथुरा में आए तो कुछ हमारा वस्त्र भी कुछ अच्छा होना चाहिए ना। कृष्ण और बलदेव जी ऐसा सोच ही रहे थे, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, उतने में सामने की दिशा से बहुत सारे धोबी आ रहे थे।
रजकम कश्चिदायांतम रंगकारम गदाग्रज दष्ट्वायाचत वंसंसी दोतान्यत्युत्तमानि च।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस समय कृष्ण और बलदेव ने सामने की दिशा से रजकम कश्चित आयांतम, कश्चित कोई एक, कुछ रजक अर्थात धोबियों को आते हुए देखा। देखिए सुखदेव गोस्वामी कश्चित शब्द लगा रहे हैं, वहां यहां नाम नहीं रख रहे हैं कि फलाने नाम का व्यक्ति आया, नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने सोचा होगा कि जो व्यक्ति कृष्ण को दान देने के लिए ना कह दिया, ऐसे दुष्टों का नाम क्या लेना है। हम सोचते ना, हम कभी कभी बातें करते हैं कि उसने ऐसा, अरे उसका नाम ही मत लो। वैसे सुखदेव गोस्वामी ने नाम नहीं लिया, बस संख्यावाचक कश्चित, कुछ रंगकारम रजकम, कुछ रजक, रजक का अर्थ है धोबी, परंतु ये जो धोबी थे कोई साधारण धोबी नहीं थे। रंगकार रजकम, ये जो धोबी थे रंग करने वाले धोबी। अब आज के लोग तो सीधा जान सकते हैं कि कुछ साधारण धोबी होते हैं, कुछ लॉन्ड्री वाले होते हैं, तो आप इतना ही समझिए लॉन्ड्री वाले थे, मतलब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा हाई फाई धोबी थे। और वे रंगकार, वे नए नए कपड़ों को रंग भी करते थे। एक बार एक व्यक्ति अपने घर पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता था, हमारे इस्कॉन के भक्तों को भोजन कराना चाहता था। बेचारा परेशान हो गया, शाम को मेरे पास आया, प्रभु सभी मंदिरों में गया, सब जगह पर गया, लेकिन सैफ्रोन वस्त्र नहीं मिला। मैंने कहा सैफ्रोन वस्त्र नहीं मिलता है, वस्त्र सफेद होते हैं, उसे सैफ्रोन रंग चढ़ाना पड़ता है। जैसे हमारे प्रभु जी बैठे हैं लाल कपड़े सैफ्रोन, ये तैयार नहीं मिलते हैं, सफेद कपड़े को उसके ऊपर रंग चढ़ाना पड़ता है। तो ये रंग चढ़ाने वाले धोबी थे, इसलिए कहते हैं रंगकारम रजकम। और ये धोबी कुछ गधों के साथ आ रहे थे, बहुत सारे गधे के ऊपर बहुत सारे वस्त्र लदे हुए थे। और ऐसे आते हुए धोबी को गजाग्रज दृष्टवा, गद के अग्रज भगवान कृष्ण ने देखा। अब मैं आपको यह कहूं, कृष्ण को गदाग्रज क्यों कहा जाता है, कौन उत्तर देगा? तुरंत आप कहोगे ना, क्योंकि बलदेव जी के भाई है इसलिए गदाग्रज। लेकिन आप विचार कीजिए, यहां पर कह रहे हैं गदाग्रज, गद के अग्रज। देखिए इसे कहते हैं भागवत आस्वादन। मैं भी जब पहली बार ये श्लोक पढ़ा तो गदाग्रज माने बलदेव जी के भाई, परंतु विचार कीजिए, अग्रज का अर्थ होता है बड़ा, अग्रज का अर्थ होता है बड़ा, और गद अग्रज का अर्थ होता है गद का बड़ा भाई। तो कृष्ण तो बलदेव जी के छोटे भाई हैं, तो गद का अर्थ बलदेव नहीं है, ये गद जो है कृष्ण के छोटे भाई का नाम है। तो आप कहोगे कृष्ण का छोटा भाई कहां से आया? तब इसके इतिहास में कृष्ण जन्म आपने कथा सुनी होगी, इसे बहुत बड़ा इतिहास। वसुदेव की 13 पत्नी थी, एक दो नहीं, और 13वीं पत्नी देवकी थी, देवकी के पहले 12 विवाह हो चुका था और उनमें से कोई एक पत्नी का पुत्र होगा गद। तो यहां पर ये गद जो है कृष्ण के छोटे भाई का नाम है। कहते हैं गद के अग्रज कृष्ण ने उस बहुत सारे धोबियों को गधे के साथ आते हुए देखा। गधा शब्द महत्वपूर्ण है। गधे के साथ रहते रहते धोबी भी गधे जैसे हो गए थे, इसलिए आगे चलकर कृष्ण की बात नहीं मानेंगे। तो जब कृष्ण ने उस धोबी को देखा दृष्टवा, तो देखकर आचयत वांसांसी, वांसांसी माने वस्त्र, वस्त्र के लिए उसे याचना की। क्या कहा? धोतानी अति उत्तमानी च, हे रजको। देखिए प्रेम से कहा कृष्ण ने, हे मेरे प्रिय धोबियो, हमारे लिए अति उत्तमानी, आपके पास वैसे तो बहुत सारे वस्त्र मुझे दिख रहे हैं, परंतु उसमें जो अति उत्तम वस्त्र हो मुझे और मेरे भाई बलदेव जी को जरा दे दो। अति उत्तमानी शब्द बहुत महत्वपूर्ण। कृष्ण ने कैसे वस्त्र मांगे? अति उत्तम। देखिए कृष्ण चाहते हैं कि उसके ऊपर उत्तम वस्तु चढ़े, ये कृष्ण की मांग है। हम भी जब कृष्ण को कुछ भी देते हैं तो सबसे उत्तम, सबसे हाई क्वालिटी की वस्तु कृष्ण को देनी चाहिए। कुछ भी कृष्ण को यदि वस्त्र पहनाने हैं तो हाई क्वालिटी, उत्तम वस्त्र। कृष्ण को यदि दिया चढ़ाना है तो शुद्ध घी का। हम करते क्या है, खुद शुद्ध घी, शुद्ध देसी घी खाते हैं और दिया में डालडा इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य भी बहुत बुद्धिमान हो चुका है आजकल, परंतु कृष्ण के लिए शुद्ध वस्त्र। वे कह रहे हैं उत्तमानी च, उत्तम वस्तु। कृष्ण को, कृष्ण का मंदिर बनाना है तो उत्तम मंदिर बनना चाहिए। आप लोग प्रचार करते हो कृष्ण को यदि दीक्षित भक्त देना है गुरु महाराज को, तो उत्तम भक्त देना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उत्तम कृष्ण चाहते हैं कि हमें उत्तम वस्तु मिले। तो प्रार्थना, याचना, एक शब्द यहां पर आया है याचना। आदेश नहीं दिया गया है चलो बोरी खोलो और निकालो, नहीं, याचना की, कृपया करके दो जोड़ी वस्त्र मेरे और मेरे भाई के लिए आप हमें दे दीजिए और उत्तम वस्त्र दीजिए। कृष्ण ने आज तक अपने जीवन में उत्तम वस्तु इस्तेमाल की थी। पता है कृष्ण कौन सा दूध पीते थे? महानंदा डेयरी का नहीं, आर्य का भी नहीं, पद्म गंधा नामक गाय का दूध कृष्ण पीते थे। नंद बाबा के पास 900,000 गाय थी, उनमें से 100 गाय स्पेशल, और 100 गाय का दूध 10 गाय को पिलाया जाता था। उस 10 गाय का दूध एक गाय को पिलाया जाता था, उस गाय का नाम पद्मगंधा। वह गाय जो दूध देती थी उस दूध से पद्म की, कमल की सुगंध आती थी। एसेंस नहीं डालना पड़ता था, हम तो रोज एसेंस, वेनिला एसेंस डाल देते हैं, सुगंध आ जाती है स्वाभाविक, गाय के थन से ही ऐसा दूध। यशोदा कृष्ण के लिए बहुत उत्तम वस्तु। और हम लोग बाहर से वड़ा पाव लाते हैं, हे कृष्ण आप प्रसाद खिला लीजिए, अब वो भैया ने कैसे बनाया है, पसीना डालकर बनाया है, क्या डालकर, और फिर बांटते, प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए, प्रसाद, क्या खाक प्रसाद है ये? खाने की बात दूरी, देखेंगे भी नहीं ऐसे वस्तु। उत्तम आनी शब्द आया है, अच्छी वस्तु चढ़ाई है भगवान के लिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बाहर का लाते हैं, कहते हैं प्रसाद खाते हैं। कृष्ण किसी के बनाए हुई वस्तु नहीं, हम अपने हाथ से स्वयं बनाएंगे तभी कृष्ण उसे ग्रहण करेंगे। आपने सोचा, नंद बाबा के पास 900,000 गाय थी और पद्मगंधा गाय का दूध, उसका दही और उसका मक्खन कृष्ण के लिए बनता था, लेकिन कृष्ण अपने घर का मक्खन नहीं खाते थे, बाहर चोरी करके खाते थे। कभी सोचा ऐसा क्यों? टाइम ही नहीं मिला, क्या सोचेंगे प्रभु जी, ऑफिस से टाइम नहीं मिलता है, घर के काम से है? सोचना चाहिए। ऐसी क्या बात थी, क्या नंद बाबा के घर पर माखन की कमी थी? अरे भरपूर माखन छाछ दूध दही था, 9 लाख गाय जिसके घर पर था, और उसमें भी उत्तम उत्तम गाय। लेकिन वह मक्खन को छोड़कर किसी अन्य गोपियों के घर पे जाकर चोरी कर कर खाते, और वह गोपिया के घर पर चोरी करते थे, सब लोग शिकायत करती थी। भागवत में वह शिकायत का वर्णन है, आपने सुना होगा वृंदावन लीला में। सुनाऊं शिकायत? सुनना। गोपिया आती थी शिकायत करने के लिए, यशोदा को कहती थी, यशोदा जी या तो आपका काना इस गांव में रहेगा या तो हम रहेंगी, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यशोदा कहती, मेरे लाला ने ऐसा तो क्या कर दिया जिसके कारण तुम रह नहीं सकती हो? बोले, क्या नहीं किया इसने? बोले, बताओ तो सही क्या क्या? बोले, हम लोग घर में काम करती हैं तो ये तुम्हारा लाला हमारे घर पर घुस जाता है और बछड़े को छोड़ देता है, और बछड़े वह गाय का पूरा दूध पी जाते हैं। अच्छा? यशोदा हंसते हुए कहती, अच्छा मेरा लाला ऐसा काम करता है? बोले, यदि कृष्ण ने ऐसा किया तो उसे डांटना चाहिए। बोले, क्या बताएं, आप इसे डांटने की बात कर रहे हैं? अरे जब हम इसे डांटते तो ये उल्टा ऊपर से हमको डांटता है। जब हम इसको डांटते हैं कि बछड़े को क्यों छोड़ा, तो इतना बिंदास होकर डांटते हुए कहता है कि मैंने मेरे बछड़े को छोड़ा है कि तुम्हारे बछड़े को छोड़ा है? तुम्हारा बछड़ा दूध पिएगा तो तुम्हारा बछड़ा बलवान होगा कि मेरा बछड़ा बलवान होगा? खामखा मारती रहती हो, बछड़े को दूध पीने नहीं देती हो, है? वो हमारे ऊपर क्रोध करता है। और क्या बताएं यशोदा जी, जब हम उस बछड़े को बांधने के लिए जाती हैं तो हमारे घर में घुस जाता है, और घर में घुसकर वे मक्खन ढूंढता है। यशोदा ने कहा, अच्छा यदि मक्खन चोरी करने के लिए आता है तो मक्खन रखो ही मत। बोले, मैया ये भी करके देखा, जब हम हमारे घर पर मक्खन नहीं रखती हैं तो ये दिखता है छोटा, ये श्राप देता है कि मेरे खाने के लिए इस घर में कुछ नहीं है, ये घर वाले दरिद्र हो जाए, इसके बच्चे भूखे मरे, उसके बच्चे भूखे मरे, उसकी 10 पीढ़ी भिखारी हो जाए। पर मैया, निष्पाप बालक यदि श्राप सच्चा हो गया तो हम लोग मर जाएंगे, इसलिए हमें रखना पड़ता है। बोले, देखो यदि ऐसा है तो उस मक्खन को, उस मटके को अंधेरे कमरे में रखो ताकि इसे देख ना पाए। बोले, मैया ये भी करके देखा, हम अंधेरे कमरे में रखते हैं परंतु इसके शरीर में इतना प्रकाश है, अंधेरे से अंधेरे कमरे में जाता है तो उजाला हो जाता है। बोले, तो एक काम करो, उस मटके को थोड़ा ऊपर टांग कर रखो। बोले, ये भी करके देखा, जब मटके को ऊपर टांगते हैं तो उखल ढूंढता है, उस टेबल के ऊपर चढ़ जाता है और उतार लेता है। बोले, और ऊपर टांगना चाहिए, ऊपर। बोले, ये भी करके देखा, जब हम ऊपर टांग देती हैं तो लकड़ी ढूंढता है, और ये लगता है छोटा, दिखने में तो 1.5 फुट है, लेकिन इसकी बुद्धि देखिए, लकड़ी लेकर आता है और बिल्कुल बीच में छोटा सा हॉल छिद्र करता है और ऐसे खड़ा रह जाता है डायरेक्ट उसके मुंह में। और ये एक ही नहीं, उसके इतने बुद्धिमान हैं इनके टीम वाले, ये एक पी लेता है, इसका पेट भर गया तो दूसरा लाइन में आता है, दूसरा पी लिया तो तीसरा, चौथा, सब। और यशोदा ने कहा, एक काम करो, और बिल्कुल छत पर बांध देना चाहिए। बोले, ये भी करके देखा, जब बहुत ऊपर बांधा तो नीचे 10 लड़के खड़े रहते हैं, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, और सबसे ऊपर ये तुम्हारा काना खड़ा रहता है। ये लोगों को गिरने का भय भी नहीं लगता है। और देखिए, बच्चा है, छोटा सा पेट है, कितना मक्खन खाएगा? ये तुम्हारा काना माखन का है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। उसके साथ बालक आए ये भी तकलीफ नहीं, लेकिन इसकी टीम में बंदर है, बंदर, बंदरों को लेकर आता है और तहेज नहेज कर देता है। और उसमें भी यदि हमारे घर पर माखन नहीं मिला तो हमारे बच्चे बेचारे शांति से सोते हैं, हम उनको सुलाकर काम करने के लिए जाते तो उसके चिमटी काटता है, बच्चे को रुलाकर चला जाता है। और क्रोधित हो गए ये लोग, तो रास्ते में कहीं उसी कमरे में कोने में सुसू कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, पूरा घर बिगाड़ कर चले जाते हैं। यहाँ कोई माल नहीं मिला तो यशोदा मैया को ऐसी कंप्लेंट। यशोदा मैया दसम स्कंद के 9 अध्याय में एकदा गृह दासीशु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। दिवाली के दिन यशोदा मैया सोच रही है कि आज माखन चोरी कर रहा है, दही चोरी कर रहा है, कल किसी लड़की को चुरा कर लेकर भाग जाएगा, कुछ करना चाहिए इसका। यशोदा मैया ने सोचा कि ये हमारे घर पर इतना श्रेष्ठ माखन होने पर भी ये बाहर क्यों चोरी करता है। तब यशोदा मैया के मन में हुआ, हाँ हमारे घर पर मक्खन तो बनता है लेकिन मेरे हाथ से आज तक मक्खन नहीं बना। इसलिए उस श्लोक में एक शब्द आया है, निर्म मंथम स्वयं दधि। सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि जीवन में पहली बार यशोदा मैया अपने हाथ से मक्खन बनाने जा रही है। आज तक यशोदा मैया ने अपने हाथ से मक्खन नहीं बनाया, इतनी श्रेष्ठ गायिका भी। इसलिए कृष्ण ने अपने घर पर भोजन नहीं किया। देखिए कृष्ण यदि कोई प्रेम से अपने हाथों से भोजन बनाते हैं उसी के हाथ का कृष्ण खाते हैं। यदि आप प्रेम से बनाओगे तो कृष्ण आपके घर पर आकर चोरी करके खा लेंगे। और मैंने जैसे कहा होटल से मंगा लिया, बाहर से मंगा लिया और चढ़ा दिया, दिखा दिया, कृष्ण नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार मैं क्या कह रहा था, कहां से कहां घुस गया। उत्तम है, आपको याद है, उत्तम कृष्ण को उत्तम वस्तु चढ़नी चाहिए। कृष्ण ने कहा कि देखो हमें उत्तम वस्तु दो, उत्तम वस्त्र दीजिए। आगे कृष्ण कहते हैं, देहवावयो समुचितां अंगवान संसिचाई तो भविष्यन्ति परम श्रेयो दातुस्ते नात्र संशय। कृष्ण ने देखा कि जब कृष्ण ने वस्त्र को मांगा तो ये धोबियों ने हां ऐसा नहीं कहा। कृष्ण ने सोचा इनकी इच्छा नहीं होगी। तब कृष्ण ने कहा एक काम करो, देही आवयो, हम दोनों को देही दे दो। क्या समुची नानी, तुम जो चाहते हो। पहले तो उत्तम वस्त्र मांगे, उत्तम के लिए ये लोग ने हाँ नहीं कहा तो कहा समुचितानी, तुम्हें जो भी समुचित लगे, रिजेक्शन फीस हो तो रिजेक्शन दे दो, जो भी देना है दे दो, लेकिन हमें चाहिए। कृष्ण ने जबरदस्ती नहीं किया, कहा कि ठीक है जो भी आपको देना है दे दो। देही आवयो, हे अंग, और उसे हे धोबी को क्या प्रेम से कहते हैं, हे अंग, अंग माने हे मेरे भाई, हे मेरे ही अंग, हे मेरे प्रिय, माई डियर धोबी, हम कहते हैं ना माई डियर इंग्लिश में, अंग का इंग्लिश यही होता है, प्रभुपाद जी ने शायद यही किया, माई डियर, हे मेरे भाई कृपया करके दो वस्त्र हमें दे दो। दातु में परम श्रेयो भविष्यति, तुम यदि हमें वस्त्र दोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा परम कल्याण होगा। देखिए भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण होगा, परम श्रेय होगा, जीवन में सुखी हो जाओगे, कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। धोबी ने कहा चलो चलो आगे बढ़ो, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, तुम्हारे जैसे बहुत मिलते हैं। कृष्ण ने अंत में कहा न अत्र संशय, अरे मेरे जैसे बहुत आते होंगे लेकिन मेरा बोलना कुछ विशेष है, तुम सुखी हो जाओगे, दो दो वस्त्र दे दो बस, तुमको सुख मिलेगा। न संचय स याची तो भगवता, भगवान याचना कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, दीजिए दो वस्त्र। क्या भगवान को वस्त्र की जरूरत है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परिपूर्णेन सर्वतः, कृष्ण को जरूरत नहीं है किसी से मांगने की, अरे दुनिया में सब कुछ कृष्ण का ही तो है, सभी वस्तु से सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चैव शशणां भग इति गणा। धन बल यश ज्ञान सुंदरता वैराग्य सब कुछ कृष्ण के पास है, परंतु फिर भी याचना कर रहे हैं। क्यों? भगवान देखना चाहते हैं, परीक्षा लेते हैं। जन्माष्टमी में हमारे इष्ट देव प्रभु और उनके पार्षद जाते हैं डोनेशन के लिए और याचना करते हैं, दीजिए। भगवान के पास धन की कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग धन नहीं दोगे तो यहां भगवान भूखे मरेंगे, कभी नहीं। भगवान देखना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति ही मेरी ओर कितना आगे बढ़ रहा है, कितना समर्पण है मेरी ओर, ये भगवान देखना चाहते हैं। यहां भी भगवान धोबी को कहे, याचना की है, यद्यपि वह परिपूर्ण है, करोड़ों वस्त्र को प्रकट कर सकते। अरे द्रौपदी को करोड़ों किलोमीटर की साड़ी दे दी, ये दो जोड़ी वस्त्र नहीं बना सकते? विचार कीजिए। परंतु फिर भी याचना कर रहे हैं। साक्षेकम रुषितव प्राह मृत्यु राग्य सुदूर मदर। जब इस प्रकार भगवान बहुत याचना कर रहे थे तो राग्य भृत्य सुदूर मदर, क्योंकि वो जो धोबी थे ना, वो लोग साधारण धोबी नहीं थे, वहां के राजा के धोबी थे, बड़ी पोस्ट पर थे, कंस के धोबी, कंस के स्पेशल धोबी होंगे। बड़ी पोस्ट पे होने के कारण अहंकार था, अभिमान था, और आप सब जानते हो अभिमान जो है ना, ये क्रोध उत्पन्न करता है। ये धन और पद का अभिमान चढ़ ही जाता है। पद का अभिमान था कि हम भी किसी बड़े व्यक्ति के धोबी हैं, और इस अभिमान के कारण क्रोध कर दिया, रुषितम प्राण। और वो धोबी ही, धोबी ने सीधा सीधा ना कह दिया होता कि देखो भाई हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है और हमारे पास आपको देने लायक कोई कपड़े नहीं है, हम नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं थी। लेकिन कपड़े तो नहीं दिए, ऊपर से साक्षेपम, कृष्ण के ऊपर आक्षेप किया, और आक्षेप करते करते रुषितम क्रोधित होकर कृष्ण को वो धोबी कहने लगा। वो धोबियों का जो मुखिया था, तो मुखिया कहने लगा, क्या कृष्ण के ऊपर एक से एक आक्षेप लगाने लगा, दोष लगाने लगा। हे गिरी वनेचरा, हे जंगल और पहाड़ों में रहने वाले, तुम लोग शहर में पहली बार आए हो, और मैं तो कहता हूं जहां से आए हो सीधा सीधा वहीं वापस चले जाओ। ये धोबी बेचारे, कृष्ण ने प्रेम से मांगा था, ना कह सकता था, लेकिन अब कृष्ण के ऊपर क्रोध करने लगा कि तुम आदिवासी जंगल से और गांव से आए हो, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। परिधत्त, कभी इतने सुंदर कपड़े सपने में भी देखा है? मांग रहे हो कपड़े दे दो कपड़े दे दो, सपने में भी कभी इतने अच्छे वस्त्र देखा है तुमने? उद्वृता, तुम तुम्हारी औकात से बाहर जा रहे हो। ये धोबी कृष्ण को कह रहे हैं, कृष्ण सुन रहे हैं, कृष्ण ने सुना ये कितनी गाली दे रहा है, एक से एक गाली थी, लगभग भागवत में 10 गाली, फिर सुखदेव गोस्वामी को आके ये क्या गाली बोलूं, लेकिन कम से कम 10 तो दे ही दिया। जैसे वहां शिशुपाल को, शिशुपाल कृष्ण के ऊपर बरस गए थे, कृष्ण ने कहा था 100 गाली तक सहन करूंगा, 100 गाली तक सुन लूंगा, 101वीं गाली होगी मेरा चक्र और शिशुपाल की गर्दन होगी, और मरना पड़ा शिशुपाल। तो ये धोबी भी शुरू किया, पहाड़ और जंगल में रहने वालों कपड़े मांग रहे हैं, कभी देखा है इतने अच्छे कपड़े को? फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, तुम औकात से बाहर जा रहे हो। राज्य द्रव्याणी अभी सत, राजा के वस्त्र को लेना चाहते हो? जोर से बोलने लगा, या ताशु यदि विवशिता, यदि जीने की इच्छा है तो तुरंत वापस चले जाओ, एक दिन भी मथुरा में रहे मारे जाओगे। धोबी कहने लगा, वापस जाओ, और यदि मरना ही चाहते हो तो खड़े रहो यहां मथुरा में। बालिशा मूर्ख कही के, माता पिता ने कुछ सिखाया नहीं है? गधे मूर्ख कृष्ण को कह रहे हैं, कृष्ण सुनते जा रहे हैं। मां एवं पार्थयम, एक बार छोड़ दिया तुमको, अभी तुरंत इसी सेकेंड मेरे ओर से हट जाओ, मेरी नजर से दूर हो जाओ, और भूल से भी दूसरी बार मेरे सामने मत आना। फिर भी कृष्ण खड़े हैं, अरे मैं बोल रहा हूं तुम्हें सुनाई नहीं देता है? वदनंती, अभी कंस के पुलिस को बुलाकर तुम दोनों को बंधवा देता हूं और जेल में बंद करा देता हूं। ननंती, और अभी कंस के पुलिसों को बुलाऊंगा और इतनी पिटाई कराऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। लुपनंती, और कंस के पुलिस आएंगे तो अभी तुम दोनों को लूट लेंगे, जो भी है ना, ये जो वस्त्र पहने हैं ना वह भी निकाल लेंगे। एवं सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया, अब ज्यादा मुझे गाली नहीं बोलना है, लेकिन ऐसी बहुत गाली बोला है। परंतु कुपित देवकी सुत, देवकी का सुत नंद का पुत वहां पर चूड़िया पहनकर नहीं गया था, मथुरा में गया था शान से। और यदि उस धोबी ने कोने में बुलाकर यदि ये सब गाली दे दी होती तो शायद छोड़ देते कृष्ण, लेकिन मथुरा में सब स्त्रियां खड़ी हैं, पुरुष खड़े हैं, उनके फॉलोअर सबके सामने, हजारों के बीच में ये धोबी इंसल्ट कर दिया। और धोबी की इंसल्ट को देखकर कृष्ण से रहा नहीं गया। कुपित देवकी सुत, वे देवकी का सुत नंद का पुत कृष्ण क्रोधित हो गया। वैसे कृष्ण कभी क्रोधित नहीं होते, लेकिन ये माँ बाप इसके ऊपर जब जाने लगा तब कृष्ण से रहा नहीं गया। और उस समय कृष्ण इतने क्रोध में आए और सारा क्रोध कृष्ण के हाथ में आ गया, और कृष्ण ने अपने हाथ को इतना पीछे खींचकर उस धोबी के गाल के ऊपर मारा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शीर काया अपायत, कृष्ण एक थप्पड़ खींच कर लगाए वो धोबी का जो मस्तक था गर्दन से अलग होकर, जो मस्तक था वो कहीं दूर जाकर गिर गया और धड़ वहीं पर गिर गया। जब इस प्रकार से कृष्ण ने खींच के दे दिया और धड़ से यह मस्तक अलग हो गया, गिर गया। जब वो एक धोबी गिरा तो उसके साथ जितने भी धोबी थे, तस्या अनुजीवित सर्वे, सब लोग इशारा करने लगे, हमको जीवित रहना है तो भागो यहां से, है? ये थप्पड़ मारते हैं तो गला टूट जाता है, मस्तक टूट जाता है। वाश कोशान विसृज्य वे, वह जितने भी धोबी थे वे सभी धोबी अपने अपने वो बोरी को छोड़कर, कपड़े को छोड़कर वहीं से भाग गए। क्यों? सोचे कि यदि कपड़े को उठाकर भागेंगे तो इतना तेज गति से भाग नहीं पाएंगे, और जीवित रहेंगे तो कपड़े और भी मिलेंगे, मरता क्या नहीं करता, कपड़े छोड़ दी। और सर्व मार्गम, और सभी धोबी एक मार्ग से नहीं अलग अलग मार्ग से गए, क्योंकि एक मार्ग से जाएंगे तो वहां ट्रैफिक जाम हो जाएगी, पकड़े जाएंगे। जिसको जो रास्ता दिखने में आया सब लोग भागे। मौत जब आती है ना तब व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है। एक बार मैं आपको सत्य घटना कहूं, हम लोग 15 साल पहले नाइट क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट जानते हैं ना, क्रिकेट मैच, तो वहां शहरों में, तो यहां गांव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शहरों में 10 बजे के बाद शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ये माइक भी 10 बजे के बाद बंद हो जाना चाहिए। तो हम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक क्रिकेट खेलते थे हमारी सोसाइटी में, और उसे कुछ लोग डिस्टर्ब होते थे। तो एक व्यक्ति ने अपने घर पर पुलिस का सायरन लगा दिया, और उसने बहुत बार हमको समझाया, हम लोग समझे नहीं, तो रात को 2 बजे वो सायरन बजाया, और उस समय तो हम बच्चे थे, पुलिस से बहुत डरते थे। बोले अब पुलिस, रात को 2 बजे पुलिस आ रही है, और सायरन भी धीरे 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 करके बढ़ाया, तो बोले दूर से अब तो निकट आ रही है। तो सब लोग अब क्या करें, बैट बॉल छोड़कर सब लोग भागे भागे भागे, बोरीवली से भागे, मलाड से निकले, 15 किलोमीटर दूर चले गए। और फिर सुबह घर पर आए, फिर दूसरे दिन हम जब देखे ना, तो जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी दीवार को हम लांग जाएंगे। उस दीवार को लांग गए, कितनी दीवार को लांगते हुए दौड़ते हुए, असंभव काम भी संभव हो। मरता क्या नहीं करता, ये लोग भागे ऐसे ही भागे सब। तो इस प्रकार भगवान ने वांसांस जगृहे अच्युतम, ये सब लोग चले गए और सब लोग बोरी छोड़कर गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोरी को खोला और उसमें से दो अच्छे अच्छे वस्त्र को निकाला, एक बलदेव जी के लिए और एक अपने लिए। अपने लिए कृष्ण ने पीले रंग का वस्त्र निकाला, कृष्ण को पीतांबर बहुत पसंद है। और बलदेव जी के लिए कृष्ण ने नीले रंग का वस्त्र निकाला। देखिए कृष्ण जो है पीतांबर पहनते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि वो राधा से बहुत प्रेम करते हैं और राधा का रंग जो है तप्त कांचन गौरांगी पीला है। राधा की याद करने के लिए पीतांबर पहनते हैं और बलदेव जी नीलांबर पहनते हैं। क्यों? क्योंकि बलदेव जी कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, कृष्ण का रंग जो है नीले रंग का है, कृष्ण का वर्ण, कृष्ण की याद करने के लिए। और राधा भी प्रायः 99% नीले रंग की साड़ी पहनती है कृष्ण को याद करने के लिए। तो इस प्रकार कृष्ण ने वस्त्र लिया और बलदेव जी को दिया और बाकी सब लोगों ने अपना अपना वस्त्र ले लिया। कृष्ण ने बस एक जोड़ी वस्त्र लिया, पहना, बलदेव जी एक जोड़ी पहने और वहां से निकल गए। बाकी के बहुत सारे वस्त्र थे वहीं पर पड़े रहे। अब कृष्ण हमारे जैसे नहीं है कि चलो दो तीन लेकर कबाट में रख देंगे अलमारी फिर आगे आराम से। कृष्ण संग्रह नहीं करते हैं। कृष्ण ने दिखाया, यहां पर कृष्ण दिखा रहे हैं कि देखो संग्रह किसी को नहीं करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक गुरु मधुमक्खी को बनाया। मधुमक्खी हमारी गुरु है। कैसे आप जानते हो ना मधुमक्खी को? मधुमक्खी जो है बगीचे से फूल फूल में से रस को खींचती है और उस रस को खींचकर एक जगह पर जमा करती है। अब जमा करेंगी और फिर जब बहुत मधु हनी एकत्रित हो जाएगा तब तो आराम से बैठकर पिएगी। संसार के कुछ लोग सोचते हैं ना अभी हम मेहनत करके पैसे कमाएंगे और फिर आराम से खाएंगे। जैसे मधुमक्खी रात दिन मेहनत करती हैं, उस मधु को चूसती हैं, फिर वहां जमा करती हैं, और जब वह मधु बहुत सारा जमा हो जाता है तब एक दिन मधुआ आता है, मधु उतारने वाला, वहां पर आग अग्नि लगाता है, धुआं करता है, उस मधुमक्खी को मारकर उस मधु को लेकर चला जाता है। वैसे हम भी रात दिन मेहनत करते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, धन एकत्रित करेंगे, संग्रह करेंगे और फिर आराम से खर्च करेंगे, लेकिन खर्च करने का समय आएगा तब काल आएगा, मृत्यु मारकर चला जाएगा, सब कुछ यहां धरा का धरा रह जाएगा, कुछ साथ में लेकर। इस संसार में बहुत लोग आए और इस संसार की वस्तु को रखना चाहे परंतु कोई रख नहीं। सहस्त्र बाहु 10 बदन आद नीतो बचेन काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे अंत चले उठ रीते। सहस्त्र बाहु सहस्त्र भुजा वाला कार्तवीर अर्जुन अपनी धन संपत्ति को हम करी धन धाम सवारे, ये मेरा है, ये मेरी संपत्ति, बहुत पकड़ना चाहा परंतु एक दिन मरना पड़ा। 10 मस्तक वाला रावण आया सोने की नगरी सोने की लंका, परंतु एक ना एक दिन छोड़ना पड़ा। और कल का इतिहास, हमारे भारत में सिकंदर आया था, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। उसके पिता पुरु ने बहुत समझाया, बेटा दुनिया को जीतकर क्या करेगा, लेकिन सिकंदर गरम खून है, पूरी दुनिया को जीतूंगा। और सिकंदर अपनी सेना को लेकर निकला दुनिया को जीतने के लिए, प्रायः 80% दुनिया को जीत लिया। परंतु उस समय पता चला सिकंदर को कोई रोग हुआ, वह रोग और कोई नहीं कैंसर रोग हुआ था। तुरंत अपना मिशन छोड़कर वापस अपने घर पर आए, कुछ ही दिन में मरना था। मरने से पहले सिकंदर ने कह दिया कि आप लोग मुझे जब भूमि में गाड़ोगे तब मेरे दोनों हाथ ऊपर रख के गाड़ना। बोले ऐसा क्यों, ऐसा तो कभी हमने किसी को नहीं गाड़ा। तब सिकंदर ने कहा, देखो जीते जी मैं नहीं समझ पाया, परंतु मेरे मरने के बाद इस कलयुग में आने वाले लोग तो इस बात को समझ सके कि सिकंदर जब इस दुनिया में आया तब दोनों हाथ खाली थे, और जब सिकंदर इस दुनिया से जा रहा है तब दोनों हाथ खाली है, खाली। पूरी दुनिया का राजा, इकट्ठे घर जहां के घर, सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे। क्या हुआ, दुनिया का राजा भी दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इसलिए भगवान की कृपा से जो भी मिला है ना, उसमें संतुष्ट रहकर भगवान का भजन करना चाहिए। संतोष नामक धन बहुत बड़ा धन है। संतोष भगवान सिखा रहे हैं। एक जोड़ी वस्त्र पहन कर निकल गए, नहीं तो कहते थे ना अपने बाल, अपने मित्रों को कह सकते थे, हे चलो इसे पार्सल करो आराम से फिर पहनेंगे। नहीं, संग्रह नहीं करना। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वहां से उस कपड़े को पहन लिए। देखिए प्रसंग बहुत छोटा है, परंतु इस प्रसंग से हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। भगवान की लीला में बहुत उपदेश छिपा हुआ होता है। इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है? इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि संसार में जितनी भी वस्तु है सब कृष्ण की है, और कृष्ण यदि उसे चाहे तो हमें दे देना चाहिए। और कृष्ण मांगते हैं गीता में, यत करोषि यत प्रश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्य मत अर्पणम, मुझे अर्पण करो। कृष्ण मांग रहे हैं, और फिर भी यदि हम नहीं देंगे तो धोबी और हम में कोई अंतर नहीं है, हमारा भी एक दिन विनाश हो जाएगा। देना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि ये मेरा है, मेरा है। क्या मेरा है? ईशावास्य इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। ये जगत जो दिख रहा है सब ईश आवास्य भगवान के अंदर से प्रकट हुआ है। और यदि कोई ऐसा कहे कि ये मेरा है, इस जगत की कोई भी वस्तु यदि कोई कहे कि मेरा है, तो तेन त्यक्तेन भुंजिता मागित कस्य सिद्धनम, वह चोर है। संसार में क्या अपना है? बस हम मान बैठे हैं कि हमारा है। वास्तव में सब कुछ भगवान का है। कैसे? प्रभुपाद जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि जैसे मान लो एक घर हो, और उस घर के जो सेठ हैं उसकी इच्छा हो कि इस घर में एक बेड बनाना है, बेड पलंग चारपाई। रेडीमेड खरीदेंगे तो कोई अच्छी नहीं आती, इसलिए मिस्त्री को बुलाकर बनवाएंगे। तो एक मिस्त्री को बुलाया, कहा कि देखो एक पलंग बनाना है, बेड बनाना है, इसके लिए क्या मटेरियल चाहिए? कागज में लिख कर दे दिया। वह सेठ गए, लकड़ा स्क्रू किला फेविकोल सब लाकर उस मिस्त्री को दे दिया अपने घर पर। और सेठ ने कहा वैसे बनाना शुरू करो, कितने दिन में बनेगा? मिस्त्री ने कहा 10 दिन में बन जाएगा। तो मिस्त्री रोज उस सेठ के घर पर उस पलंग को धीरे धीरे बनाते जा रहा था। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, सेठ देख रहे थे रोज वो पलंग बन रहा है। 10वें दिन जब सेठ घर पर आ रहे थे तो मिस्त्री उस पलंग को लेकर बाहर निकल रहा था। सेठ ने कहा, ए बाहर कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे घर पर जा रहा हूं। बोले तुम घर पर जाओ, पलंग को तो छोड़कर जाओ। बोले क्यों, ये पलंग मेरा है। सेठ ने कहा, चल चल छोड़ छोड़, ये पलंग मेरा है। मिस्त्री ने कहा पलंग मेरा है, सेठ ने कहा पलंग मेरा है, अब आप ही बताइए पलंग किसका है? क्या लगता है? जार कीजिए साधु संघ प्रभु जी, सेठ का है ना, क्योंकि वह स्क्रू लकड़ा फेविकोल सब कुछ सेठ ने लाकर दिया। मिस्त्री ने क्या किया, केवल दो तीन खिला, यहां मारा यहां मारा। वो जो वस्तु थी वह सेठ की थी, मिस्त्री ने तो केवल यहां वहां किया, इसलिए वह पलंग सेठ का है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब कुछ भगवान की है। बस हम धागे का रुमाल बना देते हैं, चतर बना देते हैं, क्या धागा हमारे शरीर से निकला है? शरीर से कुछ हमने निकाला नहीं, भगवान के शरीर से सब निकला है और यहाँ का वहां, वहां का यहाँ कर देते हैं और कुछ धन मिल जाता है, कहते मेरा है, ये मेरा है, उस मिस्त्री की तरह। लेकिन वास्तव में सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, और भगवान को अर्पण करना यही सबसे बड़ी भक्ति है। श्रीमद् भागवत में सनातन धर्म की व्याख्या, जब पूछा गया सनातन धर्म किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर देते हुए कवि ऋषि ने निमि महाराज को इतना ही कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा बुद्ध्यात्मनावानुसूत स्वभावात् करोति यत यत सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेतत्। अपनी काया से, वाणी से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से आप जो भी करते हो, करोति यत यत सकलं, ये सब कुछ नारायण को अर्पण कर देना, इसे कहते हैं सनातन धर्म, श्रेष्ठ धर्म। देना चाहिए भगवान, भगवान का ही भगवान। और कुछ लोग कहते हैं हम बहुत बड़े दानी हैं, वैरागी हैं, हमने दे दिया। इस संसार में कोई दानी है ही नहीं, जो अपने आप को दानी समझता है वह चोर है। आप दान क्या कर, आपका क्या है कि आप दान करोगे है? हमारा क्या है कि हम कहते कि हमने दान किया? अब भगवान की वस्तु भगवान को देते हैं और कहते हैं दानी, ये कोई दान है, है? सब कुछ भगवान का है, और भगवान का समझकर भगवान को देना है, ये बुद्धिमानी है। और कुछ लोग सोचेंगे हम दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अरे आप देकर तो देखो, भगवान को यदि आप एक रुपया देते हो वो 1,000 रुपया आपको वापस देंगे, 1,00,000 देते हो तो 1,00,00,000 वापस देंगे, क्योंकि भगवान हमारे जैसे कंजूस नहीं है, और न तो वहां पर कोई मंदी चल रही है कि उसको जरूरत है, वहां तो लक्ष्मी सहस्त्र करोड़ों लक्ष्मी लाइन में खड़ी है, प्रभु मेरी सेवा तो लीजिए। और भगवान का सीधा हिसाब है, हमारे 2 हाथ हैं, हम 1 हाथ से 1 रुपया डालते हैं मंदिर में टंग, तो भगवान को जब देना होता है उसके 1,000 हाथ हैं, हम 1 हाथ से 1 रुपया देते हैं, भगवान 1,000 हाथ से 1,000 देते हैं, सीधा 1,000 गुना वापस आता है। भगवान को देने वाले के वहां कभी दरिद्रता नहीं होती, कभी नहीं, ये मात्र भ्रम है। देने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और दान देने से धन बढ़ता है। बलि महाराज ने भगवान को दान दिया, क्या भिखारी हो गए? वैकुंठ के अधिपति हो गए। जिन जिन लोगों ने भगवान को दिया है, सुदामा ने कृष्ण को क्या दिया था विचार करो, केवल 2 मुट्ठी चावल दिया था, कृष्ण ने उनके बदले में सोने की द्वारका ही दे दी, ये है कृष्ण। द्रौपदी ने क्या दिया था, केवल साड़ी का छोटा सा पल्लू टुकड़ा कृष्ण के उंगली पर बांध दिया, जब लौटाना हुआ तो 1,00,000 किलोमीटर साड़ी प्रदान कर दी। वे किसी का रखते नहीं है, वे लोभी नहीं है कृष्ण, परंतु वे देखना चाहते हैं कौन देता है, कौन कितना दे रहा है। देना चाहिए, देना सीखना है, इस लीला से बस हमें भगवान को देना सीखना चाहिए। और कुछ लोग दे नहीं सकते हैं, ठीक है, भले दे नहीं सकते हो तो कम से कम कृष्ण से मांगने तो जाओ, चलो भाई दे नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, तो दे नहीं सकते तो एक काम करो, कृष्ण से मांगो। मांगना भी भक्ति है, लेकिन कृष्ण से मांगो, संसार के किसी हैरे गहरे से मत मांगो। भगवान ने कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी चभर्षव। हे अर्जुन, जो मेरे से मांगता है वह उदारा सर्वहिते, वह बहुत उदार है। भगवान के पास यदि कोई मांगता है तो भगवान उसे बहुत बड़ा दानी समझते हैं कि चलो भाई एक राइट जगह पर मांग रहा है, योग्य स्थान पर ये मांग रहा है, मांगा। ध्रुव महाराज ने मांगा, भगवान ने दे दिया। वैसे तो ध्रुव महाराज गए थे, ध्रुव महाराज की इच्छा थी पिता उत्तानपाद के गोद में बैठूं, लेकिन क्षत्रिय का खून था ना, सोतेली मां ने उठाकर पटक दिया, तुम तुम्हारे बाप के गोद में नहीं बैठ सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। बोले अब तो दिखा दूंगा, अपनी मां को पूछे, मां पिता के पिताजी से भी बड़े राज्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? मां सुनीति ने कहा, बेटा यदि विष्णु प्राप्त हो गए, विष्णु की इच्छा हो गई, तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। बोले कहां मिलेंगे? बोले जंगल में। मां मैं जा रहा हूं और जिंदा रहूंगा तो वापस आऊंगा, नहीं तो मेरी राह मत देखना। 5 साल का बालक है, निकल गया घर से। नारद मुनि रास्ते में मिले परीक्षा लेने। बेटा ऐसे घोर जंगल में तू क्या कर रहा है? बोले भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं। बोले अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, बूढ़ा होगा तब भगवान को प्राप्त करना। बोले नहीं, भगवान को प्राप्त करना। बोले क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए? डेरी मिल्क चाहिए? नहीं नहीं, मुझे मेरे पिताजी ने, मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिताजी के गोद से पटक दिया। अच्छा ये बात है, पिताजी के गोद में बैठना है। चल तेरा पिता मेरा शिष्य है, है? मैं कहूंगा तुझे गोद में बिठा लेगा। बस ध्रुव ने कहा अब वो नहीं चाहिए। पिता के पिता उत्तानपाद के बाप मनु, वो भी नहीं, मनु के बाप ब्रह्मा का राज्य भी नहीं, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए और मैं दिखा दूंगा उसको ये राज्य प्राप्त करके कि मैं भी कुछ हूं। क्षत्रियो का खून खोल रहा था। और नारद जी आप भी यदि मुझे योग्य रास्ता दिखाना तो खड़े रहिए, नहीं तो आप भी चलते बनिए, मैं ढूंढ लूंगा भगवान को। नारद जी ने सोचा कि ये पक्का शिष्य है, ये शिष्य बनने लायक। तब नारद जी ने स्थान का निर्देश किया, ध्रुव जाओ वृंदावन में मधुवन में जाकर यमुना में स्नान करके तपस्या करना। 6 महीने में ध्रुव महाराज ने विष्णु को प्रकट कर दिया, प्रकट हो गए। परंतु तब तक तो ध्रुव भक्त बन चुके थे। विष्णु आए, कहा ध्रुव बेटा क्या चाहिए? ध्रुव महाराज ने कहा स्वामी कृतार्थ अहम वरम न यांचे, प्रभु आपको देखकर तो मैं कृतार्थ कृतार्थ हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तू घर से तो निकला था कुछ लेने के लिए? बोले निकला था परंतु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि देना ही है तो आपकी भक्ति दे दो। बोले भक्ति तो मिल जाएगी लेकिन कुछ तो मांगो। बोले कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा देखो नहीं मांगोगे फिर भी दूंगा, क्योंकि संसार के आने वाले लोग कहेंगे कि विष्णु तो अपने भक्त को कुछ देते ही नहीं है। तो ध्रुव तुम्हारी इच्छा थी ना कि तुम्हें राज्य चाहिए, तुम्हारे पिता उत्तानपाद, उनके पिता मनु, मनु के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य, मैं तुम्हें ध्रुव लोक ही दे देता हूं और राज करना उस ध्रुव लोक में। और इतना ही नहीं, संसार में 60,000 वर्ष तक एक छत्र राज करोगे। इस प्रकार दे दिया ध्रुव। कम से कम दे तो नहीं सकता हो, सकते हो मांगो तो सही, दो में से कुछ भी तो करो। भक्ति इसे कहते हैं। द्रौपदी ने मांगा, गजेंद्र जी ने मांगा चाहिए। इस प्रकार से, इस लीला से हम सबको समझना है कि भगवान जो चाहते हैं उसे देना चाहिए, भगवान की इच्छा। और भगवान चाहते हैं तो आपके सामने आकाशवाणी नहीं करेंगे। कुछ लोग राह देखते हैं, भगवान तो अभी हमें कुछ कहे नहीं देने के लिए, है? वो कुछ आएंगे मांगेंगे तो देंगे ना, है? भगवान आपके लिए कोई फ्री नहीं बैठे हैं, उसे हजारों को देखना पड़ता है। भगवान जो है किसी वैष्णव के मुख से बुलाते हैं, गुरुजन के मुख से बुलाते हैं, समझ लेना चाहिए। गुरु की आज्ञा हो गई है, ये भगवान की आज्ञा है। तो इस प्रकार सब कुछ भगवान का है, भगवान को देना चाहिए। और यदि भगवान को हमने नहीं दिया तो धोबी की तरह हमारी हालत हो जाएगी। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, कहीं का नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से यह लीला हुई। परंतु गर्ग संहिता में एक प्रश्न उठाया गया कि ये धोबी, भागवत में ये कथा नहीं है, गर्ग संहिता में कृष्ण ने तो असुरों को मारा, ये धोबी को कृष्ण ने इतना क्यों मारा? तब गर्ग संहिता में बहुत सुंदर उत्तर दिया गया कि ये धोबी जो है पूर्व जन्म में अयोध्या का धोबी था। ये धोबी द्वापर युग में भी धोबी रहा और त्रेता में भी ये धोबी ही था। और त्रेता युग में राम राज्य चल रहा था, राम के राज्य में भगवान राम ने कुछ ऐसे जासूस को नियुक्त किया था कि आप संसार में विचरण करो और प्रजाओं का ध्यान रखो, यदि प्रजा सुखी दुखी है तो मुझे आकर जरा बताओ। एक दिन रात को धोबी की पत्नी बेचारी कहीं से बाहर से आई होगी। धोबी ने अपनी पत्नी को बहुत मारा, बहुत पीटा, और वो पत्नी प्रार्थना कर रही है कि आप मुझे अपने घर पे तो रखिए। तब धोबी ने कहा, मैं राम थोड़ी ना हूं, मैं राम जैसा कोई स्त्री लंपट थोड़ी ना हूं कि 14 वर्ष के लिए बाहर रही और मैं स्वीकार कर लूंगा। वो तो राम स्वीकार करते, मैं थोड़ी ना ऐसा पवित्र हूं, लंपट हूं। यह बात भगवान राम को बताई और पूरे संसार में, पूरे अयोध्या में यह बात फैल गई और भगवान राम को मजबूरन होकर सीता को त्यागना पड़ा, सीता को छोड़ दिया जंगल में। लेकिन उस लीला में तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में धोबी का कुछ कर नहीं सके, परंतु कृष्ण लीला में तो है लीला पुरुषोत्तम। वास्तव में ये कृष्ण ने मांगा और नहीं दिया, ये तो दूर की बात, कृष्ण को याद आ गया वो राम लीला, बोले साले ने मेरी पत्नी को दूर किया था, इतना खींच के इसलिए मारा, नहीं तो प्रेम से मारते। साले ने उसे बहुत परेशान किया, इतना साल तक दूर रखा मेरी पत्नी को, इसलिए एक खींच के दिया, मर गया। तो ये धोबी पूर्व जन्म का धोबी था। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि वास्तव में ये धोबी और कोई नहीं भगवान का पार्षद ही है, ये सब लीला प्रकट करने के लिए आते हैं। जब भगवान ने धोबी को मारा, मर गया, तो धोबी से एक प्रकाश निकला और प्रकाश भगवान में समा गया, उसे सायुज्य मुक्ति मिल गई। तो इस प्रकार ये रजक की कथा सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं। मैं सोचा था